था साउथ अफ्रीका के अंदर, और हमारे यूस पटेल साहब भी बैठे हुए थे, अमीर साहब रहमतुल्लाह भी सामने बैठे हुए थे, मस्जिद हमजा में लिनीशिया जनूबी अफ्रीका में हज़रत अल्लाह का बयान हुआ, और बहुत अजीब और गरीब बयान था, बहुत ख़ास कैफियत थी। शेख उलरा नजम मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अफ्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء مکمہ قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اور یہ روایت، یہ جو ہے معمولات صبح و شام ہمارے حضرت کیا تقسیم ہوتی ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلا سے اور بدبختی کے پکڑ لینے سے، بدر کی شقا وسوء القضاء اور سوء قضا سے، وشماتت الاعداء اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔ محدثین نے جہد البلا کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ملا علی قاری بہت ہی عظیم شان محدث سے فرماتے ہیں جہد البلا کی دو شرح ہیں، قلت المال و کثرت العیال، مال کم ہے اور اولاد زیادہ ہے، کسی کے ایک درجن بچے ہیں مگر ان کے لیے دودھ وغیرہ تمام ضروریات کا انتظام نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگیا؟ جہد البلا، اے اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اولاد کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہلے مال کو بیان فرمایا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت بڑا غفار ہے اور خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد وہ انعامات بھی دیتا ہے۔ دنیا کے حکمران اگر معاف کرتے ہیں تو صرف سزا سے نجات دے دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک جس کو معاف فرماتے ہیں اس کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ ہمارے شیخ نے خاص بات فرمائی کہ ہم تو کسی کو معاف کرتے ہیں، بھائی اب شکل بھی نہیں دکھانا، بس معاف تو کر دیں، یہاں سے چلے جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرتے ہیں، اتنے گناہ کتنے ہی گناہ کیے ہوں، سچے دل سے معافی مانگ لے تو اسے معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، بلکہ اس کو انعامات اور گفٹس بھی دیتے ہیں۔ استغفر ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا، بخشنے کے بعد بخشنے والا ہے، اور بہت بخشنے کے بعد تم کو کچھ انعامات بھی دے گا۔ فیمددکم باموال و بنین، تمہاری مال میں اور اولاد میں برکت دے گا۔ تو اولاد سے پہلے مال کا وعدہ اس لیے ہے انسان گھبرائے نہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا۔ معلوم ہوا اگر انسان کے پاس باغ بھی ہوں اور آپ پاشے کے لیے نہریں بھی ہوں تو یہ نعمت ہے، اور دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں مگر آخرت میں انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو 10 سال کی کم عمر صحابی تھے، 10 سال کے تھے، آپ کتنے سال کے ہیں؟ 10 سال کے، دیکھو مزہ آ جائے گا۔ 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے میں رہتے تھے، ان کی والدہ کی درخواست پر اسی اسلوب پر دعا دی جس اسلوب بیان پر کلام اللہ نازل ہوا، اللہم بارک فی مالہ و ولدہ و اطل عمرہ و اغفر ذنبہ۔ میرے پاس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ سرور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استباع لربی، مال کو پہلے بیان فرمایا۔ یہ چار دعائیں اتنی جامع ہیں کہ ان میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مال میں اتنی برکت ہوئی، اس کا مطلب ہے اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، اور اس کی گناہوں کو بخش دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ کھجور کا جو درخت میں لگاتا تھا اس میں 2-2 فصلیں آتی تھی۔ برکت تو ہونی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے، بتائیے، درخت جو لگا رہے ہیں اس میں 2-2 فصل آ رہی ہیں، 2-2 دفعہ وہ کھجور دیتا تھا، جبکہ سال میں 1 دفعہ کھجوریں آتی ہیں۔ سکھر ہم گئے تھے تو وہ پورے کھجوریں آئی ہوئی تھیں، اور جو ہے لوگ سکھر کی کھجوروں کو چھوارے بنا رہے تھے کسان، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر مفتی صہیب صاحب نے بتایا قرآن کا سایہ رکھ رہے تھے کہ یا اللہ بارش نہ برسانا، ابھی ہمارے چھوارے بن رہے ہیں، تو 2 دن تک بارش ہوئی نہیں، ہم جب آ گئے تو ہلکی ملکی بارش ہوئی تھی۔ تو کھجور کا جو درخت لگاتا تھا اس میں 2-2 فصلیں آتی تھیں، اور میرے علاوہ تمام صحابہ کرام کی 1 فصل ہوتی تھی۔ تو بعض صحابہ کرام نے سوچا یہ برکتی آدمی ہیں، تو اپنے لگائے ہوئے درخت کے بارے میں ان سے کہا تم اکھاڑ کر دوبارہ لگا دو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے لگائے ہوئے درخت اکھاڑ کر دوبارہ لگائے تو ان میں بھی 2 بار فصلیں آنے لگیں۔ سمجھ گئے؟ यानी हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से जो भी दरख्त लगवाता था उसमें भी दो दो फसलें आती थी खजूर की। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ औलाद इतनी हुई कि फरमाया मैंने 100 औलाद अपने हाथों से दफन की। दफन तो मिन सुल्मी मियातन इल्ला इस्नाई यानी 98। ये अरबी की बनावट है, वरना ये फरमाते फैनी दफन तो मिन सुल्मी समानियत मुतिसरों, हमने 98 औलाद दफन की, लेकिन तर्ज बयान ये है दफन तो मिन सुल्मी मियातन इल्ला इस्नाई, यानी हर जबान के बोलने का अलग तरीका होता है। उन्होंने ये नहीं कहा 98 बच्चे दफनाए, बल्कि उन्होंने ये कहा 100 में 2 कम मैंने दफनाए अपने हाथों से दफनाए। उमर की बरकत की दुआ ऐसी कबूल हुई, फरमाते बकी तो हत्ता सेम तुल हया सेम यस अमू से है, यानी थकने के, जैसे फरिश्तों के बारे में अल्लाह पाक फरमाते ला यस अमू, फरिश्ते थकते नहीं हैं, रात दिन ये सुबहानल्लाह पढ़ते रहते हैं, ना फरिश्तों को सोने की ज़रूरत है ना आराम की, अजीब गरीब मखलूक है ये। हम लोगों को सोना भी है, खाने भी है, पीना भी है, बहुत सारे काम करने हैं, है ना। और हम सिर्फ एक ही काम को समझते हैं, तो बहरहाल खाना पीना हज़ारों काम है, घर के भी काम है, बाहर के भी काम है, मगर फरिश्तों को काम ही नहीं है, सुभान अल्लाह में लगे और थकते नहीं हैं। इसलिए फरिश्तों के लिए नींद नहीं है, क्योंकि नींद जो है थकावट को दूर करने के लिए होती है और फरिश्तों को थकावट होती नहीं। इसलिए हमारे सब बुज़ुर्गों ने कहा है कि नींद अच्छी करनी चाहिए, अच्छी नींद हो, फ्रेश हो इंसान, ताकि दिमागी तौर पर मुतदिल रहे। ज़्यादा सोचेगा तो डिप्रेशन का मरीज़ हो जाएगा, कराची के अक्सरियत लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, इसलिए हमारे हजरत के पास हंसने वाली मजलिस होती है ताकि डिप्रेशन ख़त्म हो। ख़वातीन क्या करेंगे, वो अपने बच्चों से दिल बहलाएं, नींद पूरी करें, दिमाग पे ज़्यादा जोर न डालें। तो फरिश्तों को नींद नहीं आती, चूँकि नींद थकावट दूर करने के लिए है और फरिश्तों को थकावट होती नहीं। तो हज़रत अनस ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैं इतना ज़िंदा रहा कि ज़िंदगी से ही थक गया। आखिर में माज़ा मिन सहाबती फिर बसरा, हज़रत अनस के इंतकाल के बाद बसरा जो है सहाबा कराम से फाली हो गया। और चौथी दुआ फरमाई वक़्फ़िर ज़म्बहु, जब तीन दुआएं कबूल हो गईं तो अर्जो राबिया, चौथी दुआ की कबूलियत की भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला अनस को बख्श देगा। इतनी प्यारी बात है, ये थे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाही अलैहिम। तो जादिर बला की ये शरह हो गई, यानी माल की कमी और औलाद की ज्यादती। और दूसरी शरह है कि ऐसी मुसीबत जिसमें मौत की तमन्ना हो, ए अल्लाह मुझे मौत दे दे, अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने एक मरीज को देखा, वो कह रहा था मुझे मौत का इंजेक्शन लगा दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह ऐसी मुसीबत और बला से बचाए कि आदमी मौत की तमन्ना करने लगे। तो ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन जहदिल बला, कि माल कम हो औलाद ज़्यादा हो, या ऐसी मुसीबत आ जाए जिससे मौत की तमन्ना करने लगे। तो ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आ सकती हैं, तो ये दुआ मांगने का अहतमाम करना चाहिए। आगे फरमाया वज़र की शफा, हम बदनसीबी के पकड़ लेने से पना चाहते हैं। शकावत के भी दो मायने हैं, बदनसीबी तो है ही, शकावत का दूसरा मायना है महरूमी का। और बुखारी शरीफ की हदीस है, हुमुल जुलसा ला यश्का बिहिम जलीसून, जो लोग अल्लाह वालों के पास बैठते हैं वो महरूम नहीं होते। इसलिए जब कोई अल्लाह वाला या अल्लाह वालों का खादिम आ जाए तो अपनी तन्हाइयों की इबादतों को छोड़कर उनके पास बैठो। यहाँ तक कि हकीम उलुम्मत ने लिखा है, जब शेख आ जाए तो नवाफिल और मामूलात मुलतवी कर दो, शेख के पास बैठो। ये नहीं कि शेख तो मजलिस कर रहा है और तुम अकेले अपना वजीफा पढ़ रहे हो, शेख का पुर्ब और शेख की मजलिस के वक्त में नवाफिल और इशराक सब मुलतवी कर दो। एक हमारे दोस्त फजर की नमाज के बाद यासीन शरीफ पढ़ते थे, पढ़नी भी चाहिए माशाल्लाह। दरवाज़ा बंद है क्या बच्चों, देखो तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी मजलिस आजकल हो रही है, हज़रत उमरे के सफ़र पर हैं फजर के बाद, तो आप अभी जो है सूरह यासीन शरीफ मेरी मजलिस के बाद पढ़ लें, सिर्फ 15-20 मिनट की तो होती है, आज तो खैर देर हो गई। तो 15-20 मिनट की मजलिस होती है, फिर आप हाफिज़ भी हैं, आप बाद में पढ़ लीजिए। तो माशाल्लाह उन्होंने सूरह यासीन शरीफ बाद में पढ़नी शुरू की और अल्लाह के फजल करम से फिर उनको बड़ा फ़ायदा होने लगा। अब लाइन पर आए, इतने दिनों बाद बाल कटवाए, तो मालूमी है इसकी मिसाल दी है। सब्ज़ी मंडी में सेब खरीदने के लिए धूप में चलना फिरना भी पड़ता है, बदबू अलग होती है, और सेब के बाग में जाओगे तो सेब की खुशबू भी सूंघते रहोगे और सेब भी खाते रहोगे। अगर सेब के बाग में एक आदमी सो रहा है तो सेब की खुशबू उसके अंदर जा रही है। इसी तरह अगर अल्लाह वालों के पास कोई तहज्जुद भी ना पड़े तो भी जब उनके पास से उठेगा तो दिल में नूर पाएगा। जैसे रात की रानी के नीचे चारपाई बिछा कर सो जाओ तो रात भर नाक खुशबू इम्पोर्ट करेगी और सुबह आपका दिमाग तरोताज़ा होगा। इसलिए खानकाहों में सोना तन्हाइयों की बेदारी से अफजल है। वह दर की शपा से अगर बचना है, यानी अगर तुम बदनसीबी से और महरूमी से बचना चाहते हो तो अल्लाह वालों के जलीस बन जाओ, क्योंकि अल्लाह वाले अल्लाह के जलीस होते हैं। वो अल्लाह के साथ उनका दिल अटका हुआ होता है, वो सिर्फ जिक्र करते वक्त अल्लाह के नहीं होते, वो हर वक्त अल्लाह वाले बने रहते हैं। तो आपको शकावत के पकड़ने से तहफ़ हासिल करना है तो बदनसीबी से बचने का एक ही रास्ता है कि जल्दी से किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाओ। बच्चों को भी लेके जाएँ, ख़वातीन जहाँ पर्दे से बयान होता है उन वहाँ भी चाय लेके जाएँ, चाहे महीने में एक दफ़ा या दो तीन महीने में एक दफ़ा ख़वातीन चली जाएँ, इंशाल्लाह उनको भी पर्दे से फ़ायदा होगा। लायश्का बिहिम जलीस हूँ, पूरी कायनात में शकावत से बचने का कोई रास्ता नहीं, बदबख्ती बदनसीबी से बचने का पूरे आलम में कोई रास्ता नहीं है। आप सारी दुनिया में भागे भागे फिरोगे, शर्कन वर्बन शुमालन जुनूबन, मैं शकावत फिर भी पकड़ लेगी। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इस वक्त गुनाहों की आग लगेगी, कोई जगह बची भी नहीं। लिहाजा लायश्का बिहिम जलीस हूँ, अहलुल्लाह के पास बैठ जाओ तो आपकी शकावत पर ला दाखिल हो जाएगा। और ला में आपको हालन इस्तकबालन हिफाजत की गारंटी है, क्योंकि लायश्का में मुजारे का लफ्ज़ है, यानी आपकी मुस्तकबिल की बदनसीबी से भी इसमें हिफाजत और ज़मानत है। शकावत से फ़िलहाल भी महफूज हो जाओगे और आइंदा भी महफूज रहोगे इंशाअल्लाह, बदनसीबी नहीं आएगी। जो अल्लाह वालों के साथ रहते हैं वो मुस्तकबिल में भी बदनसीब नहीं हो सकते, मुजारे में हाल इस्तकबाल दोनों ज़माने होते हैं। लिहाजा अल्लाह वालों के दोस्त खुश नसीबी के साथ जीते हैं और खुश नसीबी के साथ मरते हैं। इसकी शरह अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी शरह बुखारी में इन अल्फाज़ से फरमाई है, इन्ना जलीसहुम यंदरी जुमाहुम, अल्लाह वालों के पास बैठने वाले उन्हीं के साथ इंदिराज कर लिए जाते हैं। अल्लाह वालों के पास बैठने वालों को अल्लाह उन्हीं में लिख लेता है। फी जमीइ मा यतफज़्ज़लुल्लाहु अलैहि बिही इकरामन लहुम, तमाम मेहरबानियाँ जो अल्लाह वालों पर होती हैं उनके साथियों को भी दे देता है। क्योंकि यहाँ मफ़ऊल लहू आ रहा है, मफ़ऊल लहू फ़ेल का सबक बयान करता है। जैसे ज़रबतुहु तादीबन, मैंने पिटाई की, इसकी अदब सिखाने के लिए तादीबन मनसूब है। मनसूब क्यों है? क्योंकि मफ़ऊल लहू है। और अगर आपने मजदूदन कह दिया कि बांध कर कुर्सी से, बांध कर रस्सी से मारा, तो मजदूदन इसका हाल है। और फिर मस्जिद कह दिया तो मकान भी आ गया, ये मफ़ऊल फ़ी ही हो गया। जमी मा यतफज़्ज़लुल्लाहु बिही अलैहि इकरामन लहू, इसमें अपने प्यारों का इकराम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कूनू मासादिकीन, अल्लाह वालों के साथ रहो। हमारे बुज़ुर्गों और अकाबिर का तआमुल चला आ रहा है कि शेख से बैत होना, उनके मशवरे से रास्ता तय करना। क्या हाल है? ठीक है। ये बहुत अकाबरीन का तरीका चला आ रहा है कि शेख से बैत होना, उनके मशवरे से रास्ता तय करना। खाली अलीम से नहीं होता, बड़े बड़े उलमा हज़रत के पास बैठे हुए थे जनूबी अफ्रीका में। अपने शेख से पूछो और पूछ पूछ के काम करो। तो मशायख से तआमुल शहरे औलिया है। अगर सुपर हाईवे को छोड़कर किसी छोटी गली में घुस जाएगा उन पर डाका पड़ जाएगा, क्योंकि सुपर हाईवे में बहुत सी मोटरें चल रही हैं, तो डाकू भी डरता है किसी मोटर में कोई साहिब असला हो सकता है। तो शहरे औलिया को मत छोड़ो, इसी पर चलो। आज जो कुछ अफसर से काम हो रहा है सब मेरे मशायख की दुआओं का असर है। मैं अपने मुरीदों और अहबाब पर इसको जाहिर भी करता हूँ कि सब हमारे हजरत वाला की दुआओं को सदका है। इसमें तकब्बुर से हिफाजत है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह के बाद में है कि अशरफ अली कुछ नहीं है, सब हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह की जूतियों का सदका है। इसमें नफ्स की नफ़ी हो जाती है, अपना कमाल मत जाहिर करो। लेकिन ये बात रखो, याद रखो, अब खास बात आ गई, निरी सोहबत काफ़ी नहीं है, क्योंकि वक्त भी नफ्स तक हमें अल्लाह ने सहाबा का हाल बयान किया है। यूरीदू ना वजहूं, मुजारे से बयान फरमाया, इसमें हाल और इस्तकबाल दोनों ज़माना होता है, यानी हाल में भी इस्तकबाल में भी सिर्फ मैं ही उनके दिल की मुराद हूँ। सहाबा किराम जब सोहबत में बैठते थे तो अल्लाह की ज़ात मुराद होती थी। यूरीदू ना वजह, उनके दिल में अल्लाह की मुराद होती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बेघर हो गए, जब सहाबा किराम में बैठते थे तो सहाबा किराम की मुराद अल्लाह ताला की ज़ात होती थी, और उनके दिल में मैं मुराद हूँ और ये मेरे मुरीद हैं। बताओ गुनाह गैरुल्लाह है या नहीं? लिहाजा अगर यूरीदू ना वजहू चाहते हो तो गुनाहों को छोड़ने का इरादा भी करो। अगर गुनाह छोड़ने का इरादा नहीं करोगे तो अल्लाह को हरगिज नहीं पाओगे। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए सहाबा कराम की शान बता दी, युरीदून वजहू, यानी मुझे हर वक्त अपना मुराद बनाओ, इरादा करो कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश रहे और एक लम्हा भी नाराज़ ना हो। युरीदूना का फ़ाइल मुरीदूना है। लोग कहते हैं कुरान पाक में ये मुरीदी का सबूत कहाँ है, युरीदूना का इसमें फ़ाइल मुरीदूना है, युरीदून है ना, इसका इसमें फ़ाइल मुरीदूना है। तो जो इरादा करके अल्लाह को अपना दिल में अल्लाह को अपने दिल में मुराद बनाएगा, पक्का इरादा कर ले कि अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है, कितना ही हराम मज़ा आए, ऐसे हराम मज़ों पर करोड़ों लानत भेजो, नज़र की हिफाजत करके गम उठाने की आदत डालो। ये नसीबे दोस्ता हैं, नसीबे औलिया हैं, ग़िज़ाए औलिया हैं। इसके बदले में अल्लाह आपके दिल को प्यार अता करेगा कि मेरे बंदे ने मेरा कानून यगुज़ु मिन अब्सारिहिम नहीं तोड़ा, अपना दिल तोड़ दिया। ऐसे टूटे हुए दिल को अल्लाह प्यार करता है कि मेरी मोहब्बत इसने दिल तोड़ दिया, अपनी खुशियों का खून किया और मुझे खुश रखा, मुझे खुश करने के लिए अपनी खुशी को नाखुशी में कन्वर्ट कर दिया। मेरी खुशी क्या थी कि लड़की को देख लेता, लड़के को देख लेता, फिल्म देख लेता, लड़के के साथ गुनाह, लड़की के साथ गुनाह, वीडियो गेम खेल लेता, तस्वीरें देख लेता, मूवी देख लेता, ड्रामा देख लेता, ये मेरी खुशी है। अल्लाह की खुशी क्या है, इन अपनी खुशी को आग लगा दो। असल में मेरी खुशी नहीं है, नफ्स की खुशी है। तो जो अपनी खुशियों का खून करेगा, जो मर्द या औरत, और अल्लाह को खुश रखेगा, मुझे खुश करने के लिए अपनी खुशी को नाखुशी में कन्वर्ट करेगा, तो फिर अल्लाह को रहम आता है। इस आलम में कितने लोग औरतों से बदनज़री करके हराम लज्जत उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरा ये बंदा ऐसा है जो अपने सीने में कल्ब शिकस्ता रखता है, टूटा हुआ दिल रखता है। ये नहीं कि एक दफ़ा दिल तोड़ दिया, चूँकि हर वक्त बेपर्दगी उरियानी आम है तो मुसलसल अपने दिल को तोड़ता रहता है। तो ऐसे शिकस्ता दिल को अल्लाह जो अल्लाह की याद में तसलसल के साथ टूटते रहते हैं और हराम लज्जत अपने अंदर नहीं आने देते, इन पर अल्लाह ताला तजल्लियात क़ुर्ब इलाहिया मुसलसिला मुतवातिरा वाफिरा बाज़िगा अता करते हैं। बाज़िगा कहते हैं 12 बजे दिन के सूरज को, कितना गहरा सूरज होता है, कितनी गर्मी लगती है 12 बजे। तो ऐसे शख्स जो हर वक्त गुनाहों से बचने का गम उठाता है, उनके दिल पर नहायत कभी तजल्ली नाजिल होती है। वाफिरा के मायने बहुत ज़्यादा, मुतवातिरा के मायने मुसलसल, क्योंकि हर वक्त मुसलसल गम उठाते हैं। जब हालात गम में नहीं होते, मसलन मस्जिद में बदनजरी का कोई मौका नहीं होता, तब भी इनका इरादा होता है कि जब तक जीता रहूँगा आपका बन के जीता रहूँगा। हम लोग भी ये इरादा करें, ये थोड़ी कि खानका में आए शेख के पास आए तो अल्लाह वाले बन गए और जब चले गए तो शैतान वाले बन गए, शैतान वाले अल्लाह वाले बन के रहना है रोज़ हैं। मस्जिद में बदनजरी का कोई मौका नहीं होता, तब भी उनका इरादा होता है कि जब तक जीता रहूँगा आपका बन के जीता रहूँगा और खून आरज़ू पीता रहूँगा, हराम आरज़ू की तकमील नहीं करूँगा। इस इरादा दायमा मुसलसिला की वजह से उनके कल्ब पर तजल्लियात क़ुर्ब इलाहिया मुसलसिला मुतवातिरा वाफिरा बाज़िगा अता होती है। उनका चेहरा तर्जुमान कल्ब होता है, जिसके कल्ब में मौला होता है उसका चेहरा और आँखें तर्जुमान मौला होती हैं। उसके चेहरे पर आपको मौला की तजल्लियात नज़र आएंगी, और जिनके दिल में कोई लौंडा या लौंडिया की होगी, कोई माशूक या माशूका होगी, उसके चेहरे पर उस माशूक के ग्राउंड फ्लोर के जोग्राफी होंगे, मनहूसियत होगी, लानत बरस रही होगी। उनके चेहरों पर गंदी जगहों के जोग्राफी होते हैं, क्योंकि उसके दिल में वही तमन्ना है कि कोई माशूक या माशूका मिल जाए तो उसके गंदे मकामात में मुरूर उबूर करके सुरूर हासिल कर लें, बेगैरती और कमीनेपन और अल्लाह के साथ बेवफाई करके मुजरमाना ज़िंदगी गुजारें, उसके चेहरे पर भी वही असरात होते हैं। अल्लाह हज़रत उस्मान गनी अज़ीज़ानु की मजलिस में एक शख्स आया, फरमाया मा बालु अक़वामी यदरशहु मिन आयुनिहिम ज़िना, क्या हाल ही ऐसी कौमों का जिनकी आँखों से ज़िना टपकता है। जब चेहरा बदनजरी करेगा, दिल आँख बदनजरी करेगी तो दिल ख़राब होगा, अब दिल ख़राब हो उसके असरात चेहरे पर भी आते हैं। आप किसी बेवफा को दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, लिहाजा आप भी अल्लाह ताला के साथ बेवफा मत रहो। अल्लाह की दी हुई रोटी खाते हो तो अल्लाह के वफादार रहो। अगर 10 दिन खाना ना मिले तो बताओ माशूक तलाश करोगे या रोटियाँ मांगोगे। इसलिए मैं दोस्तों से कहता हूँ, बा वफा रहो, बा हया रहो, बा खुदा रहो, बस 3 काम कर लो, फिर देखो दुनिया में तुम एक लैला के चक्कर में हो, वो भी आला मारिदिन जूता है, पकड़े गए तो जूता पड़ेगा, और तकवा से रहोगे तो तुम्हारे जूते उठाए जाएंगे, नाफरमानी करोगे तो सर पर जूते पड़ेंगे। इश्क़ मौला वालों के जूते उठाए जाते हैं और इश्क़ लैला वालों की खोपड़ी पर जूते मारे जाते हैं। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं जब तक जान है हिम्मत तक्वा है, अगर हिम्मत तक्वा ना हो तो तक्वा फर्ज नहीं रहेगा वरना जुल्म हो जाएगा। जब ताकत तक्वा हिम्मत तक्वा नहीं है फिर तक्वा फर्ज करना जुल्म है या नहीं? अल्लाह ताला जुल्म से पाक है। तो मालूम हुआ मरते दम तक हिम्मत तक्वा और ताकत तक्वा मौजूद है, लेकिन इस्तेमाल हिम्मत तक्वा और इस्तेमाल कुदरत तक्वा में हम मुजरिम हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तुम अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारी इस्तेआत है। कुछ समझ में भी आ रही है बात? बहुत दर्द भरा हजरत का बयान हुआ था इसलिए मैं बड़े एहतियात से पढ़ रहा हूँ अपनी इस्लाह की नियत से। तुम अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारी इस्तेआत है और इस्तेआत का इस्तेमाल करने ही में हम गफलत बरतते हैं, जबकि अल्लाह वाले हमेशा गमगीन रहते हैं, रोते हैं कि मालूम नहीं हमने इस्तेआत का हक अदा किया या नहीं। जितनी हमारी कुदरत है उतना हमने इस्तेआत का हक अदा किया या नहीं? जितनी हमारी नज़र बचाने की कुदरत है इस कुदरत को हमने इस्तेमाल किया या नहीं, या हम इसमें चोर हैं और हम इसमें कायन हैं? इसी फिक्र गम में वो मरते रहते हैं, सारी ज़िंदगी घुलते रहते हैं, अश बार आँखों से माफ़ी मांगते रहते हैं। हकीम उम्मत ने अजीब बात फरमाई, जो शख्स कहता है मुझे ताकत नहीं रहती, हसीनों को देख के मैं पागल हो जाता हूँ, पुरानी आदत रास्ते खो चुकी है। बोलते हैं ना पुरानी आदत है जनाब कैसे छूटेगी, जालिम ये लगती नहीं है जालिम ये मुँह से लगी हुई, छूटती नहीं है जालिम ये मुँह से लगी हुई। उसका जवाब हकीमुल उम्मत ने दिया, कुदरत हमेशा जिद्दैन से मुतालिक होती है। जिस काम को करने की कुदरत होती है आदमी उसको ना करने पर भी कादिर होता है, यानी अपोजिट थिंग्स आर पॉसिबल, ये मतलब है इसका। जो आदमी हाथ उठा सकता है वो नीचे गिरा भी सकता है, जो हसीनों पर नज़र डाल सकता है वो हटा भी सकता है, बशर्त ये कि अल्लाह ताला का डर हो। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, अगर पुलिस का सुपर जो भी होता है अफसर जो है वो कहे मेरा लड़का मेरी लड़की है जो नज़रबाज ये कहता है हसीनों को देखकर मैं पागल हो जाता हूँ, वो आज मेरी लड़की को देखकर दिखाए और एक हाथ में उसकी पिस्तौल भी हो तो वहाँ इसका नफ्स बड़ा अकलमंद बन जाता है। मालूम हुआ नज़र बचाने की ताकत है, जबी तो पिस्तौल देखकर पागल नहीं हुआ। आह मखलूक के खौफ से नज़र नीची करने वालों, इस बड़ी ताकत का भी ध्यान पैदा करो जिसे हमारी नज़र की बिनाई छीनने या हमारे गुर्दे बेकार करने के लिए किसी पिस्तौल की ज़रूरत नहीं है। जब गुर्दे बेकार होते हैं फिर पता चलता है। इतने लोगों को मैंने देखा जब मेरी पदरी थी तो इलाज कराने आए हुए थे, उनके गुर्दे भी बेकार हो गए थे। माशाल्लाह माशा ऊपर बैठ जाइए आराम से नशी शक्ल। तो मैं बता रहा था सोहबत शेख में अव्वल तो यूरीदूना वजहू ज़रूरी है कि मुखलिस हो और गुनाहों से बचने का मुजाहिदा भी करें, यानी सोहबत शेख के साथ बंदा जो है अल्लाह वालों की सोहबत में मुखलिस भी हो और गुनाहों से बचने का मुजाहिदा करें। दूसरे ये कि शेख की सोहबत में उसके आदाब का ख़ास ख्याल रखें, शेख के सामने मिट कर रहना चाहिए, इसकी रोक टोक और डांट को अपनी इस्लाह का ज़रिया और शेख का प्यार समझना चाहिए। ये नहीं कि शेख ने किसी बात पर टोक दिया या पकड़ हो गई कि ये काम क्यों किया तो अगर मगर और बहसबाजी शुरू कर दी, इसमें ईज़ाए शेख है।